नमस्कार भारत, आज है 12 मार्च दिन रविवार और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया विपक्ष। कांग्रेस में दिल्ली के कुनबे की राजनीति पर उठे सवाल।
दिल्ली और उसके आसपास काबिज 40-50 नेता हैं, वो ज्यादा जिम्मेदार हैं। बिल्डिंग को उन्होंने घेर रखा है और उस बिल्डिंग में न नई हवा आने देते हैं, न नई विचार आने देते हैं, न नई चेहरे आने देते हैं, न नई रोशनी आने देते हैं।
अब किसके हाथ में होगी उत्तर प्रदेश की कमान, सबके मन में यही सवाल।
हर प्रश्न का उत्तर समय पे मिलेगा, जब उसका समय आएगा तो उसका भी उत्तर मिलेगा।
पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर पर पार्टी का हौसला मजबूत।
हमारी पार्टी पहली बार MLA की इलेक्शन पंजाब में लड़ी है, इस करके हमारे को एक प्लेटफॉर्म तो मिला ना, जीत हार तो बनी।
चुनाव के नतीजों और देश की राजनीति पर उसके असर की होगी समीक्षा, पर पहले मुख्य समाचार।
BBC समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। शनिवार को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में BJP को बहुमत मिला है, वहीं पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में BJP ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 403 में से 325 सीटें अपने नाम कर ली। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 54 और बहुजन समाज पार्टी की 19 सीटें ही उनके खाते में आई हैं। उत्तराखंड में भी BJP को जबरदस्त जीत मिली है। 70 सीटों में से 57 सीटों पर BJP को कब्जा मिला है, वहीं 11 कांग्रेस को, 2 अन्य सीटें अन्य के खाते में गई हैं। कांग्रेस के लिए जीत की खबर पंजाब से आई, जहां 117 में से 77 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया। आम आदमी पार्टी को 22 और अकाली दल BJP गठबंधन को 18 सीटें मिली हैं। 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में कांग्रेस को 17, BJP को 13 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी का यहां खाता भी नहीं खुला। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में BJP को 21 और कांग्रेस को 28 सीटें मिली हैं। अमेरिका के मैनहट्टन के संघीय अभियोजक को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बर्खास्त कर दिया है। प्रीत भरारा उन 46 अटॉर्नी में से एक हैं जिन्हें ओबामा प्रशासन के दौरान नियुक्त किया गया था। इन सभी को कार्यकारी डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अपने पद से इस्तीफा देने को कहा था। भरारा का कहना है कि वो ऐसा नहीं कर रहे थे, उन्हें ट्रंप ने निजी तौर पर नवंबर में चुनाव के बाद पद पर बने रहने के लिए कहा था। ट्विटर पर भरारा ने जोर देते हुए लिखा है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए उन्हें निकाला गया है। उन्होंने बताया कि मैनहट्टन का संघीय अभियोजक बनना उनके पेशेवर जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। अमेरिका में शुक्रवार रात व्हाइट हाउस में एक घुसपैठिए ने अंदर जाने की कोशिश की, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। जब यह घटना हुई तब राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। ये व्यक्ति व्हाइट हाउस के बाहर के घेरे को फांदकर अंदर आया था, तभी उसे पकड़ लिया गया। उसके पीठ पर एक बैग था। सुरक्षा कर्मियों ने पूरी जांच कर आश्वासन दिया कि बैग में कुछ भी खतरनाक सामान नहीं था। इस बारे में ट्रंप ने कहा,
Secret Service did a fantastic job last night. I appreciate it. Secret Service did a fantastic job. He was a trouble.
गुप्तचर अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनकी सराहना करती हूँ। वो व्यक्ति एक बहुत ही परेशान व्यक्ति था। दरअसल ये बहुत बुरी बात है कि वो इस तरह आ रहा था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने शानदार काम किया है। सऊदी अरब में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य रूढ़िवादी साम्राज्य में युवा महिलाओं को अपनी उपलब्धियां पाने के संघर्ष को प्रेरित करना था। रियाद में हुए इस अनोखे सम्मेलन में सऊदी अरब की पहली महिला पर्वतारोही राह मुबारक जैसी हस्तियां पहुंची। राह ने कहा कि देश की लड़कियों को ये जरूर सिखाना चाहिए कि वो किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं है। एक आयोजक वहां स्लोगन लेकर खड़े थे जिस पर लिखा था, सऊदी अरब की महिलाएं सब कर सकती हैं। आयोजकों का कहना है कि उनका मकसद सऊदी की युवा पीढ़ी को रोल मॉडल से मिलवाना था। सऊदी अरब के राजशाही साम्राज्य में महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना होता है और उन्हें गाड़ी चलाने की मनाही है। नीदरलैंड के रोटरडम में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान के हजारों समर्थक हाथों में झंडे लेकर तुर्की दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए। डच सरकार ने तुर्की के विदेश मंत्री को रैली को संबोधित करने के लिए नीदरलैंड न आने की इजाजत दी थी। ये लोग इसी फैसले के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। इससे पहले अपने मंत्री को नीदरलैंड में न आने देने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने डच मंत्रालय की तुलना नाजियों से की थी। BBC समाचार।
Ah. आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने धमाकेदार जीत हासिल की है। पंजाब में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है, मगर गोवा और मणिपुर में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति दिखाई दे रही है। दोनों राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, मगर कल के परिणामों में सबसे ज्यादा जिक्र जिस राज्य का हो रहा है वो है उत्तर प्रदेश, जहां भाजपा 14 साल बाद सरकार बनाने जा रही है और अब हर कोई जानना चाहता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि आज संसदीय दल की बैठक में इसका फैसला होगा। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
तमाम अनुमानों को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ 1.5 दशक बाद सत्ता में वापसी करने जा रही है, बल्कि उसने राज्य में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इसके बाद पार्टी में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बहुमत दल का विधानसभा में नेतृत्व कौन करेगा, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी नेताओं से इस बारे में पूछे जाने पर वो जीत की खुशी की ही चर्चा कर रहे हैं, इस पर नहीं। पार्टी नेता विजय बहादुर पाठक कहते हैं,
हर प्रश्न का उत्तर समय पे मिलेगा, जब उसका समय आएगा तो उसका भी उत्तर मिलेगा।
हालांकि पार्टी औपचारिक तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव संसदीय बोर्ड की बैठक में तय करेगी, लेकिन माना जा रहा है कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इच्छा ही सर्वोपरि होगी। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा कहते हैं,
हमारे यहाँ व्यवस्था है, पार्लियामेंट बोर्ड हमारे यहाँ तय करता है सारी चीजें।
दरअसल पार्टी ने चुनाव से पहले किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया था, ऐसे में कई नाम चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी तैरते रहे। अब जबकि पार्टी को 2/3 से भी ज्यादा बहुमत हासिल हो गया है, तो ये सवाल कहीं तेजी से उभर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चयन में पार्टी किस तरह से सारे समीकरणों को साधती है। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता आयरन कहती हैं,
कई लोग केशव मौर्य जी का भी नाम दे रहे हैं, और पहले सोचा जा रहा था कि राजनाथ सिंह जी वापस आएंगे, नहीं तो जैसे हरियाणा में उन्होंने गट्टर जी को देके अपनी सरकार चला रहे हैं, वैसे वो यहाँ पे भी चला लेंगे। देवेंद्र फडणवीस नया चेहरा नहीं थे, उन्होंने स्टेट लेवल पे कैंपेन को लीड करा था, वो स्टेट प्रेसिडेंट थे, वहाँ का फॉर्मूला अलग रहा और हरियाणा का अलग रहा। हरियाणा में उन्होंने बिल्कुल न्यू फेस को दिया जो कि बिल्कुल आरएसएस के थे।
बहरहाल ये तो तय है कि मुख्यमंत्री के चयन में प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही शायद अंतिम फैसला निर्भर करेगा, लेकिन देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री किसी अनुभवी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर यहाँ भेजते हैं या फिर किसी नए और युवा चेहरे पर दांव लगाते हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के हाथ से तो सत्ता गई ही, उसके साथ तालमेल करने वाली कांग्रेस का प्रदर्शन भी बहुत ज्यादा खराब रहा। वो सिर्फ 7 सीट जीत सकी। कांग्रेस ने पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई थी, बाद में गठबंधन का विकल्प चुना। शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने हार के बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं की निर्णय क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने।
मुझे तो लगता है संदेह है कहीं ना कहीं कि कुछ सैबोटेज भी हुआ होगा। मुझे लगता है कि यूपी के कुछ नेताओं में दमखम नहीं था कि जमीनी स्तर पर लड़ें और इस अभियान को आगे ले जाएं। ऐसे नेता होते हैं जो स्थिति का ज्यादा फायदा उठाना चाहते थे, समझते थे कि सपा के कंधों पे चल के हम उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें कायम कर लेंगे या खुद हम सरकार बना लेंगे। शायद उन लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में पार्टी का स्वार्थ जो है वो धराशायी कर दिया।
क्या ये आलाकमान आपका पार्टी में समझ नहीं पा रहा है?
नहीं, ये तो है। देखिए, हम कई चीजों में परिस्थितियों को बदलते हुए नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, एक तो बीच में युग आया था यूपी में जब जातिवादी व्यवस्था की जातिवादी पॉलिटिक्स हुई। पहली चीज तो हम उसको नहीं पढ़ पाए, और इसलिए नई जातियों को जोड़ना या पहचान का सामाजिक आइडेंटिटी का जोड़ होता है, उसमें हम नहीं जुड़ पाए। और जब समय बदलने लगा, और इनफैक्ट कांग्रेस को इस बात का जरूर क्रेडिट लेना चाहिए कि आर्थिक रूप से बदलने में हमने भी बहुत अच्छा योगदान किया, तो जब आप आर्थिक रूप से किसी देश को बदलते हैं तो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी बदलती हैं। नए लोग आते हैं, नई ऊर्जा आती है, नए लोगों की भावनाएं बनती हैं, तब आप पुराने धरे से राजनीति किसी भी प्रदेश में करें वो नहीं चलती। हमने यूपी में ना नई लीडरशिप डेवलप की, ना नए लोगों को मौका दिया, और हम एक जो सामंती तरीके से काम करते हैं कि हम पार्टी की पोस्ट बांटे आपस में, पार्टी के लोगों को में अपना वर्चुअल काम रखें, लेकिन जमीनी हकीकत पे काम ना करें, और वो लोग पार्टी का चेहरा भी बनते रहें, तो मैनेजर को जब आप लीडर बनाने की राजनीति करते रहेंगे जो हमने यूपी में की, तो फिर ये परिस्थिति बनी।
जब अमेठी और रायबरेली में भी कांग्रेस को झटका लगता है, तो क्या सवाल जो आंतरिक लोकतंत्र का बार बार दबा दिया जाता है कांग्रेस में, क्या उस सवाल को उठाने की जरूरत आपको दिखती है फिलहाल?
देखिए, रायबरेली अमेठी में तो हम पहले भी हारते रहे सीटें, तो केवल उसको अलग से मत करिए, बट हाँ ये बात तो है कि हमारी पार्टी में जो एक कमजोरी आ गई है कि हम अपने ऊपर पे सवाल न खड़े होने देते हैं न उनका जवाब देते हैं, उससे हम समझ नहीं पाते हैं कि जब सवाल खड़े होते हैं तो कई सवाल वाजिब होते हैं और जब वाजिब सवालों का आप जवाब भी देंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे।
क्या आपके यहाँ पार्टी में कोई अध्यक्ष से सोनिया गांधी जी से या राहुल गांधी उपाध्यक्ष जो है उनसे कोई सवाल पूछता है, जवाबदेही की बात होती है?
ये तो पता नहीं साहब, सीनियर 2-4-5 पूछते होंगे तो पूछते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जवाबदेही की या जवाबदेही छोड़िए चर्चा की, विचार विमर्श की और सही नए लोगों को लाने की थोड़ी सी प्रथा इसलिए भी बंद हो गई है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं। पूरे देश में नया नेतृत्व आ रहा है, नई सोच के लोग आ रहे हैं, नई समझ के लोग आ रहे हैं, नई तरीके से वो भागीदारी देखते हैं, वो नई तरीके से लोकतंत्र को देखते हैं और हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको दिक्कत ये है कि नयापन अगर आएगा तो सबसे पहले वही उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस के जो टॉप आप समझ लीजिए खासकर दिल्ली और उसके आसपास काबिज जो 40-50 नेता हैं, इसकी वो ज्यादा जिम्मेदार हैं। बिल्डिंग को उन्होंने घेर रखा है और उस बिल्डिंग में न नई हवा आने देते हैं, न नई विचार आने देते हैं, न नई चेहरे आने देते हैं, न नई रोशनी आने देते हैं।
कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित। परिणामों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई हमारे साथ हैं, स्वागत है रशीद जी आपका। तो सुना आपने संदीप दीक्षित को, कितनी वास्तविकता है उनकी इस परेशानी में?
देखिए संदीप दीक्षित बहुत सफाई से साफगोई से बातें कह रहे हैं, लेकिन देखिए अभी चुनाव, अभी कांग्रेस का संगठन का चुनाव होने वाला है, मतलब राहुल गांधी को अध्यक्ष, क्या संदीप दीक्षित या शशि थरूर या कपिल सिब्बल इस किस्म के जो लोग हैं जो पार्टी में नयापन चाहते हैं, खुलापन, क्या ये कोई एक लीडरशिप चैलेंज कहेंगे कि भाई आइए हमसे इलेक्शन लड़िए? जब इलेक्शन की बात होगी तो कांग्रेस में कोई सामने नहीं आता और वो सर्वसम्मति से राहुल गांधी या जैसे पहले हुआ वो लोग चुनाव हो जाता है। तो तमाम कांग्रेस के कल्चर में सब लोग जिम्मेदार हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी से जो तालमेल भी किया गया वो एक ड्राइंग रूम में बैठ के किया गया, मतलब उत्तर प्रदेश की कार्य समिति या कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ली। देखिए आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं जिसमें लाखों लोग एक तरीके से स्टेक होल्डर थे, उनसे कोई बात नहीं हुई, तो परिणाम में भी यही नज़र आता है कि जो कांग्रेस के जो लोग जो थे जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे उन्हें अगर समाजवादी पार्टी को वोट देना होता तो बहुत साल से उनके पास ये ऑप्शन विकल्प मौजूद था, तो इस तरह की बातें हुई हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ।
इसका मतलब अभी भी आपको शक हो रहा है कि जैसा है वैसा ही रहेगा, ये लोग चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे या केवल बोल के रह जाएंगे?
जी देखिए अभी तो पूरी ये तैयारी हो रही है कि पंजाब में कांग्रेस जीत गई तो उसमें राहुल गांधी को उसका श्रेय मिलना चाहिए, दूसरी तरफ गोवा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो एक इन्विटेशन आएगा और हो सकता है सरकार वहां बन जाए, मणिपुर में तो 5 में से 3 और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व था ही नहीं 27 साल से, और ये भी कहा जाएगा कि उत्तराखंड में तो हरीश रावत अपना खुद चुनाव हार गए, तो ये सब मैनिपुलेशन की राजनीति कांग्रेस में होती है।
जी जी आपसे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश से जुड़े एक और सवाल की चर्चा, वहां नई विधानसभा में इस बार केवल 24 मुस्लिम विधायक चुने जा सके हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में ये संख्या 69 थी, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार एक तिहाई मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत हासिल कर सके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था और अब सरकार उसी की होगी। ऐसे में क्या सोचते हैं प्रदेश के मुसलमान? समीरात्मज मिश्र ने लखनऊ में मुस्लिम मतदाताओं का मूड भांपने की कोशिश की।
रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं ये मैटर जो है इसको डिस्कस किया जा सकता है, मगर हम लोग इनसिक्योर नहीं है क्योंकि बीजेपी के राज में राइट्स जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस और बाकी जो पार्टियाँ हैं उनके राज में राइट्स ज़्यादा हुए और मुसलमानों पे ज्यादतियाँ ज़्यादा हुई, तो उस हिसाब से हम ये सिक्योर समझ रहे हैं अपने को कि बीजेपी हम लोगों का वेलफेयर ज़्यादा देखेगी। पिछली जो असेंबली थी इसमें 69 MLAs जो थे वो मुस्लिम्स थे, मगर मुजफ्फरपुर के राइट होने के ऊपर एक भी मुसलमान मंत्री और एक भी मुसलमान MLA वहाँ नहीं गया, तो ऐसे मुसलमान MLA और मंत्री होने से क्या फ़ायदा जो कि पार्टी गाइडलाइंस के तहत वहाँ पे नहीं जा सके।
लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, आप इतनी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी है बीजेपी और कई स्टेट में अब तो उसकी सरकारें हैं, अगर वो कहती है कि उसके पास कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिला तो अपने आप
हम डिप्राइव्ड फील करते हैं ऐसे केस में, जब 20 करोड़ माइनॉरिटी का कोई आदमी ना मिले इलेक्शन में खड़ा करने के लिए, तो थोड़ी सी ये दिस इज ए सिचुएशन विच इज फ्राइटनिंग कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या एक पर्टिकुलर ग्रुप को सोसाइटी के आप टोटली इग्नोर कर रहे हैं।
जी स्थिति में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका लोकतंत्र के प्रति उसकी कितनी निष्ठा रहेगी, कितना सम्मान रहेगा? और
नहीं, लोकतंत्र के प्रति तो रहेगी, क्योंकि और भी देर आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज जहां से आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। हो सकता है कि प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जो है दे विल आल्सो रियलाइज।
आप जैसे यूथ है उनको कितनी उम्मीद इससे दिख रही है?
डेमोक्रेसी स्टिल हैज अ चांस, वो हमेशा कर सकती है और करना चाहिए, लेकिन इंक्लूजन होना चाहिए, एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए।
आगे भी लगता है कि नहीं देंगे, तो इसमें अगर ये करके कुछ दिखा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, देखते क्या करते हैं।
उम्मीद है आपको कि?
उम्मीद तो हमें हर चीज में हमेशा रहती है।
ऐसी स्थिति में भी कि किसी को टिकट नहीं दिया और कहते हैं कि हमारे पास टिकट देने लायक कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं था,
ये तो गलत बात है। देने वाले सब कुछ दे सकते हैं और अभी भी चाहें तो वो कर सकते हैं, मगर हम लोगों को इसकी उम्मीद कम है।
मुझे तो खुशी है कि बीजेपी आई है और ये मेजोरिटी से आई है, सब लोगों ने चुना है इसको, तो इसको अच्छा काम करना चाहिए, तो अब देखते हैं क्या होता है।
आप बताएं, आप बहुत देर से मुस्कुरा रही हैं।
बिल्कुल उम्मीद है, मोदी जी बहुत अच्छा करेंगे और आगे भी अगर उनको रहना है तो हम ही लोगों को लेकर चलना पड़ेगा।
लखनऊ के कुछ मुस्लिम बताता रशीद साहब, कुछ समझ नहीं आया, लोग निराश भी हैं और साथ साथ उम्मीद भी जता रहे हैं, तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति है, होगा क्या?
देखिए, कन्फ्यूजन की स्थिति इसलिए है कि देखिए, एक तरफ तो लोकतंत्र पे पूरा विश्वास है लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा, जो भाजपा और मुसलमानों के जो रिश्ते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब उसमें एक तरफ आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों को भाजपा की तरफ से ज़्यादा विश्वास नहीं है और उस पर ज़्यादा भागीदारी नहीं करते, तो फिर उनके अभी कहना सही है कि कैंडिडेट नहीं मिलते, लेकिन एक बड़े तबके को कोई भी राष्ट्रीय स्तर का जो राजनीतिक दल है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें कुछ संवाद स्थापित करने की ज़रूरत होगी। राजनाथ सिंह ने, मुख्तार अब्बास नकवी ने और उमा भारती, कई लोगों ने कहा कि अच्छा होता कि कोई मुस्लिम प्रत्याशी भी होते। मुझे लगता है कि समय के साथ देखिए जो एजेंडा होगा, मुसलमानों में भी एक रियलाइजेशन आ रहा है। दरअसल एक मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा इस तरह का मिथ है कि वो मुसलमान चुनाव को बदल,
मिथ क्या इस इलेक्शन में दूर हो गया?
देखिए, वो बहुत मतलब उस हिसाब से एक अच्छी बात है कि वो मिथ दूर हो गया। लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही हुआ, लेकिन उसका जो एक जिसे हम कहते हैं दुखद पहलू यह है कि लोकसभा में भी कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी उत्तर प्रदेश से नहीं जीत पाया। अभी भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन एक तिहाई हो गई संख्या। तो ये सारी
स्थिति गंभीर है ये कि एक भी मुसलमान ना हो सरकार में।
जी हाँ, देखिए ये एक ये मुस्लिम समुदाय के लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितने देश और समाज के लिए, क्योंकि एक लोकतंत्र में देखिए उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही भागीदारी पर होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देखिए राजनीतिक दल जो है वो भी अपने आप को थोड़ा बदले, अगर बदलें तो उसमें एक नई शुरुआत हो सकती है।
जी, वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब आइए रुख करें लखनऊ का ही, जहां से हमारे सहयोगी विनीत खरे आज छपे अखबारों के साथ कार्यक्रम में हमसे जुड़ चुके हैं। विनीत, बहुत अलग होंगे आज के समाचार पत्र।
बहुत अलग हैं, अलग क्या कहें, चुनावी बिल्कुल रंग से बिल्कुल रंगे हुए हैं। अमर उजाला सबसे पहले मेरे सामने है, बड़ी सी नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, लिखा है जादूगर बड़े बड़े शब्दों में, यूपी में चार दशक में सबसे बड़ी जीत। उसके बाद से अमित शाह का एक स्टेटमेंट है कि मुख्यमंत्री पर आज होगा फैसला। आजादी के बाद सबसे ज्यादा महिलाएं इस बार विधानसभा पहुंची हैं, तो 41 महिलाएं जो विधानसभा में पहुंची हैं उसका जिक्र है। 41 मुस्लिम विधायकों का जिक्र किया, जो उनकी संख्या घटी है उसका भी जिक्र है। अयोध्या फैजाबाद में भाजपा ने सीटें जीती हैं इसका जिक्र है। नवभारत टाइम्स में केशव प्रसाद मौर्य का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि 14 साल के एक एक भ्रष्टाचार की होगी जांच, कारण क्या रहे जीत के इसका जिक्र किया है हिंदुस्तान ये नवभारत टाइम्स ने। चेहरा नहीं मोदी लहर, नोटबंदी सर्जिकल स्ट्राइक, बड़े चेहरों पर कब्जा, संगठन प्रचार पर फोकस, जातीय बैलेंस, तो ये कारण गिनाए हैं। उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट है कि भाई आप 2019 तो भूल जाइए, 2024 की तैयारी में जुटिए। हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान में हेडलाइंस में पढ़ दूं, मोदी मैजिक और जातीय गणित से जीती भाजपा, वेस्ट पश्चिमी यूपी में केसरिया फसल लहलहाई, रुहेलखंड में 52 में से 38 सीटें, अवध में चप्पे चप्पे पर कमल खिला, ध्वस्त हुआ सपा का इटावा औरैया किला, पूर्वांचल में भाजपा ने दो तिहाई सीटें जीती और बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर भाजपा जीती है।
जी विनीत, अच्छा, अच्छी जानकारी दी, अच्छी अच्छी हेडलाइंस हैं और खबर भी काफ़ी आज रंगीन है, और आज फिर काफ़ी घटनाक्रम भरा रहेगा लखनऊ, नज़र रखेंगे आप, और आपसे फिर चर्चा होगी हमारी शाम की सभा में। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 57 सीटें हासिल कर सत्ता में वापसी की है। कांग्रेस की हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सीटों से लड़े थे और दोनों से हार गए। देहरादून से शिव प्रसाद जोशी की रिपोर्ट।
बीजेपी के लिए होली से दो दिन पहले रंगो गुबार और ढोल नगाड़ों का ये जश्न इसलिए भी खास है कि न सिर्फ पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है बल्कि इस बार उसने सामान्य बहुमत से आगे छलांग लगा दी है। बीजेपी नेता जनादेश पर गदगद हैं। पार्टी प्रवक्ता देवेंद्र भसीन,
जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यक्रमों को अपनी मोहर लगाई है और दूसरी ओर कांग्रेस के भ्रष्टाचार को पूरी तरह नकारते हुए कांग्रेस का एक प्रकार से सफाया उत्तराखंड से कर दिया है, जो कि बहुत आवश्यक था। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का निर्माण किया था और इसके विकास का एक रोड मैप तैयार किया, लेकिन कांग्रेस ने उसको ध्वस्त कर दिया। अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की लहर पूरे देश में बह रही है उसका लाभ भी उत्तराखंड को मिलेगा।
उधर कांग्रेसी खेमे में सिर्फ हार का सन्नाटा होता तो कोई बात थी, ये सन्नाटा स्तब्धता और ऐसी हैरानी का है जो लंबे समय तक उसे चुभती रहेगी। शनिवार दोपहर थके मांदे और हार से निराश निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्यपाल के पॉल को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने मीडिया से बात की, उसमें दर्द था और कटाक्ष भी।
इस राज्य में मुझको एक डिस्टिंक्शन प्राप्त है कि मैंने इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से मैं बर्खास्त चीफ मिनिस्टर बना और बर्खास्त चीफ मिनिस्टर से रीइंस्टेटेड चीफ मिनिस्टर बना और उसके बाद अब केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हूँ। तो आप मीडिया के दोस्तों को भी ये जो अलग अलग फॉर्म मेरे रहे हैं उसमें सहयोग देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
बीजेपी ने जीत तो बड़ी भारी हासिल कर ली है, लेकिन अब उसके लिए मुख्यमंत्री का चयन एक बड़ा सवाल बना है। हालांकि पार्टी का कहना है कि आलाकमान ने सब कुछ तय किया हुआ है। वैसे पार्टी में कांग्रेस से आए पूर्व मुख्यमंत्री विजय भोगणा और सतपाल महाराज के अलावा लोकसभा सांसद भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक के नाम चल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का नाम भी दौड़ में था, लेकिन उनको भी नजदीकी हार से झटका लगा है। इनके अलावा डार्क हॉर्स के तौर पर नव निर्वाचित विधायक त्रिवेंद्र रावत और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलिन बलूनी भी हैं। उत्तराखंड के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का संतुलन साधे बिना किसी नाम पर फैसला संभव नहीं। वैसे उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता का आलम यह रहा है कि यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री दो साल से ज्यादा कुर्सी पर रह नहीं पाया, फिर वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। शिव जोशी, बीबीसी, देहरादून।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कांग्रेस के हाथ से जाते रहे, मगर उसने कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में पंजाब में शानदार वापसी की है। 117 सीटों में से उसने 77 सीटें जीती, मगर पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी की दिल्ली दोहराने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। उम्मीद से अलग नतीजे आने से पार्टी समर्थकों पर कैसा असर हुआ है, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता सलमान रावी मोहाली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे।
हमारी पार्टी पहली बार एमएलए के इलेक्शन पंजाब में लड़ी है, तो इस करके हमारे को एक प्लेटफॉर्म तो मिला ना, जीत हार तो बनी हुई है।
बहुत मेहनत की यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कई महीनों तक, अभी भी जोश आपका बरकरार है।
बिल्कुल जी,
के बावजूद
हम इसको अपनी जीत मानते हैं, अपनी हार नहीं मानते, क्योंकि पंजाब की पॉलिटिक्स में आज पहली बार एक नई जन्मी पार्टी ने 25 सीटें ली हैं और आज पंजाब की पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत हो गई है। वोट शेयर के मामले में भी देखेंगे आप तो हमें काफी अच्छा वोट शेयर मिला है। तो आज हम विधानसभा में रहते हुए, ठीक है हम गवर्नमेंट में आते तो बहुत अच्छे काम करके दिखाते, पर आज भी हम पंजाब के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आम आदमी पार्टी जब तक विधानसभा में रहेगी वो पंजाब के लोगों के लिए काम करती रहेगी और गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा काम नहीं करने देगी जो लोगों के खिलाफ होगा।
क्या कमी रहेगी, क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से उतनी सीटें नहीं आ पाई जितना अनुमान आप लगा रहे थे?
अगर हमें 24 या 25 सीटें मिली हैं तो वो प्लस ही हुई ना हमारे लिए, तो हम तो जीरो पे थे।
लेकिन क्या कारण था कि कांग्रेस इतना बढ़त बना ली?
हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं अकाली दल वालों ने उनकी बैकडोर से हेल्प की है।
ये थे मोहाली से आम आदमी पार्टी के समर्थक। और विधानसभा चुनाव हालांकि 5 राज्यों में हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को फतह करने के लिए जी जान लगा दिया और उसे उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तराखंड में भी जबरदस्त जीत मिली। अब सिर्फ इन दो राज्यों की सरकारें ही नहीं बदलेंगी बल्कि देश का राजनीतिक परिदृश्य भी बदल सकता है। बीबीसी हिंदी के रेडियो एडिटर राजेश जोशी ने नतीजों पर वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता से बात की और पूछा कि अब राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा।
देखिए, ये जो 5 चुनाव हुए हैं
ये एक तरह रेफरेंडम है मोदी जी के सरकार पे, क्योंकि अब 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल बाकी है 2019 के लोकसभा के चुनाव के लिए। यदि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव खासकर देखें, जिस तरीके से उन्होंने जीता है, इससे जो मोदी जी का जो अपना वर्चस्व था भाजपा में, सरकार में, देश पे, वो और भी मजबूत हो गया है। और जो 2019 का लोकसभा चुनाव है, उस तरफ यदि हम देखें तो उनका रास्ता और भी साफ हो गया है। साथ साथ अब राष्ट्रपति का चुनाव आएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव आएगा, इनमें भी इनको अपने कैंडिडेट उनको लाने में उनके लिए आसान हो जाएगा। इससे उनको एक मॉरल अथॉरिटी मिल गया है, एक मतलब इलेक्टोरेट ने उनको एक अथॉरिटी दे दी है।
तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ा गिनाइए कि जो बदल सकती हैं। जैसे सबसे बड़ा जो मुद्दा था राम जन्मभूमि का, रिजर्वेशन पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत सारी बातें करते रहे हैं, रिजर्वेशन दूसरा मुद्दा है, महाराष्ट्र में मराठा लोग, पाटीदार लोग वो आंदोलन कर रहे हैं, जाट लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा कोई बड़ा कदम उठा सकती है जिससे कि अब तक की राजनीति में जो कुछ फैसले हुए सब दरकिनार और कुछ नया शुरू?
राम जन्मभूमि में शायद वो कुछ कर पाए अभी, हालांकि भाजपा के नेता यही कहते हैं जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके अनुसार। मगर अब विरोध करने के लिए यदि वो मंदिर बनाना चाहे, अब वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुसलमानों ने जो इस चुनाव में, खासकर उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से उनका एक भूमिका था कि हम भाजपा को हराएंगे और वो एकजुट हो गए, मगर उनका वोट बट गया अंतोगत, यही लग रहा है, वो अब उस हालत में नहीं है कि वो लड़ पाए। और दूसरी जो बात आपने उठाई थी आरक्षण, वो ज़्यादा जटिल मामला है, क्योंकि आपको याद होगा कि बिहार चुनाव के पहले मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण को दोबारा हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए। और ये मामला लेकर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो, इन्होंने इस मामले को बिल्कुल इसको यूज़ करके बहुत ही सफलता उन्होंने पाया। इस बार भी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले कोई आरएसएस नेता जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में उन्होंने इसका कुछ जिक्र किया था, मगर आपने देखा होगा कि बीजेपी तुरंत उसको डिनाई कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको आने नहीं दिया। मुझे नहीं लगता है कि अब नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा एक गठबंधन बनाया है सवर्णों का और पिछड़ी जातियों का कि वो आरक्षण मुद्दा को उसमें कुछ बदलाव ला सके। हालांकि वो इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जाट आरक्षण मांग रहा है, पटेल मांग रहा है, ये तो लोग कहेंगे कि ये तो फॉरवर्ड कम्युनिटीज हो गए हैं, मतलब आर्थिक
गाड़ियों में प्रदर्शन करने के लिए बीएमडब्ल्यू वगैरह में
निकलते हैं, मगर पटेल और जाटों का कहना है ये सब हमारे पास है मगर सरकारी नौकरियां हमें नहीं मिलते हैं। राजस्थान में जाटों का कंप्लेंट था कि जब से ये आरक्षण हो गया तब पंचायतों में भी उनका वर्चस्व नहीं रहा, तब उन्होंने लड़के वो बैकवर्ड बन गए ताकि वो पंचायतों में भी फिर अपना वर्चस्व दोबारा रीएस्टैब्लिश कर पाए। तो ये बहुत ही एक जटिल मामला है, इसको किस तरीके से मोदी इसको हैंडल करेंगे मुझे पता नहीं है।
विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ये थी वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता। और अब सभा की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। शनिवार को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिला, वहीं पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाएगी। अमेरिका में शुक्रवार रात व्हाइट हाउस में एक घुसपैठिए ने अंदर जाने की कोशिश की जिसे सुरक्षाकर्मियों ने नाकाम कर दिया। सऊदी अरब में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य रूढ़िवादी साम्राज्य में युवा महिलाओं को अपनी उपलब्धियां पाने के संघर्ष के लिए प्रेरित करना था। नीदरलैंड के रोटरडम में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के हजारों समर्थक हाथों में झंडे लेकर तुर्की दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए। डच सरकार ने तुर्की के विदेश मंत्री को रैली को संबोधित करने के लिए नीदरलैंड न आने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए ये लोग नाराज थे। बीबीसी समाचार।
तो मुख्य समाचारों के साथ ही ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात 7:30 दिन भर में होंगी, लेकिन तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com, जहां आप विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ साथ दुनिया भर की खबरें और उनका विश्लेषण देख पढ़ और सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया शाकिर आलम ने। अब अपूर्व कृष्ण को अनुमति दीजिए। नमस्कार।